अगला याद जो है वो रिबा से मुतालिक है। रिबा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी चीज को कहते हैं, रा बा वाव से है ना, रिबा का मतलब ज्यादा होना, बढ़ना, इजाफा होना। तो यानी जो इसका माना हम सूद लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, इसलिए कि आपने किसी को कर्ज दिया, जब वापस लेने लगे तो बढ़ा के आप लेना चाहते हैं। जो उसने बढ़ा के आपको दिया ना, मतलब आपने $100 किसी को कर्ज दिया और जो कहा जब वापस करोगे तो मुझे $110 चाहिए, तो वो जो $10 आपने ऊपर लिए वो क्या है, सूद। इसलिए रिबा की डेफिनेशन क्या है, हर कर्ज जो नफा खींच लाए वो रिबा है, वो नफा रिबा है, जो उसके ऊपर आपने नफा कमाया ना वो रिबा, ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं रिबा, हर कर्ज जो नफा खींच लाए। ठीक है, अब ये जो रिबा के ऊपर इंशाल्लाह ताला आज हम ये 6 आयात पढ़ेंगे, सूरह बकरा में ये 7 आयात आई है यहाँ पे, और सूरह आले इमरान में 1 आयत है, फिर सूरह निसा में 2 आयतें आई हैं, और 1 आयत फिर सूरह रूम में है। तो इस तरह से कुरान पाक में और जगहों पे भी रिबा की ममानियत, इसके हराम होने के ऊपर आयात हैं। फिर जो सूरह आले इमरान में है आयत, वो आयत नंबर 13 है, या अल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफ मुदाफतन वत्तकुल्ला लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों सूद मत खाओ बढ़ा चढ़ा के, और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे। और इसी तरह आगे सूरह निसा में भी आयात हैं, 2 आयतें हैं, 160 और 161, उनमें है यहूद के इन बड़े बड़े जराइम के सबब हमने उनकी उनके ऊपर बहुत सी पाकीजा चीजें जो हलाल थी हराम कर दी, उनके बड़े बड़े जराइम की वजह से, और इस वजह से कि वो बहुत आदमियों को हिदायत के रास्ते से रोकते थे, और इस वजह से कि वो सूद लिया करते थे हालांकि उनको इससे मना किया गया था, और इस वजह से कि वो लोगों का माल नाहक तरीके से खा जाते थे, और हमने इन लोगों के लिए जो उनमें काफिर हैं दर्दनाक सजा का सामान मुकर्रर कर रखा। तो बड़े बड़े जराइम में सूद भी यहाँ पे आया है, और उनकी शरीयत में भी सूद हराम था। इसी तरह सूरह रूम में आयत नंबर 39, जो चीज तुम इसलिए दोगे कि वो लोगों के माल में पहुंच के ज्यादा हो जाए तो वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ती, और जो ज़कात तुम दोगे अल्लाह की रजा के लिए तो ऐसे लोग अल्लाह के पास बढ़ाते रहते हैं, यानी अपना अजर उनका बढ़ता रहता है। ये कुछ आयात हैं जो कि सूद की ममानियत पे कुरान पाक में, इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जो सूद की हुरमत के ऊपर है। ये ऐसा मामला है जो आज इस कदर कॉमन हो गया है, इतनी ज्यादा यानी इसके अंदर हमारी सोसाइटीज, मुल्क के मुल्क बल्कि हुकूमतें मैं कहूंगी, वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं इसके अंदर कि आज ऐसा लगता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जी सूद के बगैर तो ना कारोबार हो सकता है, ना कोई इकोनॉमी चल सकती किसी मुल्क की, सूद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता काम, हालांकि ऐसा नहीं है। और आज इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला जो अहकामात हैं इसमें और जो बातें वो सारी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, देखेंगे इन आयात को, और इसमें से हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कितनी बड़ी वईद है इस चीज की, वो लोग जो सूद के ऊपर लेना देना करते हैं, लेन देन करते हैं। 40 अहादीस इसकी हुरमत में आई हैं, सारी तो नहीं हम कवर कर सकेंगे, मगर जितनी भी अहादीस आपके सामने रखी जा सकती होंगी इंशाल्लाह ताला उन पे भी बात करेंगे। पहले देखते हैं सूद खाने वाले की क्या हालत होगी आखरत में। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, खाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि खाते हैं, हम कहते हैं ना उसने उसका माल खा लिया तो क्या मतलब है, पैसे पकड़ के खा लिए, नहीं मतलब है कि यूज कर लिया ना, ले लिया। तो वो लोग जो खाते हैं रिबा को, यानी रिबा लेते हैं, ला यकूमूना, नहीं वो खड़े होंगे, ऐसे नहीं खड़े होंगे कि जैसे एक आम नॉर्मल इंसान खड़ा होता है, वैसे नहीं खड़े होंगे। इल्ला मगर कमा यकूम अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, मगर ऐसे खड़े होंगे नॉर्मल बंदे की तरह नहीं, जैसे वो जिसको शैतान ने खबती बना दिया छू के। वो कैसा होता है जिसको शैतान ने खबती बना दिया? कभी आपने ऐसा देखा है जिसको जिसको कह देते हैं इसको जुनून हो गया, इसको जिन चिमट गए? कैसा होता है वो बंदा? शैतान से मुराद यहाँ पे जिन नहीं है कि जिसको जिन चिमट गए हो, छू लिया हो, वो कैसा पागल सा होता है? कभी उसकी हरकतें देखी है? वो कैसा होता है, कैसा बिहेव कर रहा होता है? कहते हैं इसके ऊपर साया हो गया। बिल्कुल जुनूनी सा हो जाता है ना, ना सही से खड़ा होता है, ना सही से बात करता है, ना कुछ उस चीज, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही पागल है ये, पागलों वाली उसकी हालत होती है। तो क्यामत के दिन ऐसे इंसान का जो सूद खाता है, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो वो नॉर्मल नहीं होगा बल्कि दीवानों की तरह खड़ा होगा, लड़खड़ाता होगा, बैलेंस नहीं होगा और ऐसे पागलों की तरह फिरेगा। क्यों ऐसा क्यों है? याद रखिए कयामत के दिन की जो सजाएं हैं ना, उनकी मुमासलत है, यानी यानी मुमासलत को कहेंगे सिमिलैरिटी है, जो सजा है ना जुर्म के साथ उसके कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी, समझे? फॉर एग्जाम्पल मुतकब्बिर की क्या है कि वो उस दिन कैसे उठेगा? चींटियों की तरह, लोग उसको अपने पैरों तले रोंद रहे होंगे। क्यों चींटियों की तरह ही क्यों उसको कहा गया? इसलिए दुनिया में बहुत बड़ा बनता था ना, तो अल्लाह ताला ने उस दिन दिखाया कि ये तुम्हारी हैसियत है, आप तुम वहां पे बड़े बनते थे, आज देखो तुम लोगों के पैरों तले रोंदे जा रहे हो। ठीक है, ये कैसे होता दुनिया के अंदर? याद रखिए इस वजह से ये वो आपके जहन में आएगा ना, क्यों ऐसा क्यों है, वो दुनिया में ऐसा कुछ काम करता होगा जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। और वो क्या है? दुनिया के पीछे, वो दुनिया में वो माल के पीछे बावला हुआ हुआ था, खपती हुआ हुआ था, तो आज अल्लाह ने इसको बावला ही उठाया। दुनिया में क्या करता था? इसको सिर्फ अपनी जात से मतलब था, इसको ये नहीं था कि कोई किसी की जरूरत क्या है, कोई कितना मजबूर है, किसी के हालात क्या है, किसी के ऊपर उसको रहम नहीं आता था, तरस नहीं आता था। बस उसको ये था कि मैंने कर्ज दिया है ना, मुझे सूद समेत वापस चाहिए, चाहे तुम्हारे कपड़े तक बिक जाए। आपको पता है कई लोग, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये नहीं, ये एक सच्ची बात है, सच्ची वाकया हुआ है, बहुत पहले की बात आपको बता रही हूँ, कि एक आदमी था जिसने बहुत कर्ज लिया हुआ था और उसको कारोबार में बेहद नुकसान हुआ और हालत ये हो गई थी, यानी कि उसका घर नीलाम होने लगा था और हर चीज, तो उसने ट्रेन ट्रैक पे जाके लेट गया और उसने खुदकुशी कर ली, ट्रेन के नीचे आ गया था। वो ही कुन टेक इट कि कहाँ इतना वो था और कहाँ ये हालत आ गई। तो ये जो सूद के ऊपर काम कारोबार होते हैं या कर्ज लिए जाते हैं, अब किसी बंदे की क्या हालत हो गई है, क्या उसके मसले हो गए हैं, उसको क्या, दे डोंट केयर। जो सूद खोर है ना, चाहे कोई बंदा है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई इदारा है, वो कहते हैं हमें हमारे पैसे चाहिए। अब तुम, चाहे तुम्हारा घर का चूल्हा चल रहा है या नहीं, तुम्हारे पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ है या नहीं, तुम्हारी क्या मजबूरी है, तुम्हारे बच्चे तो नहीं भूखे बैठे हुए, तुम सड़क पे तो नहीं आ जाओगे, दे डोंट केयर। हमें बस, हमने 1 लाख दिया था, हमें 1 लाख 10 ही मिलने चाहिए। तो तुम दुनिया में खपती हुए हुए थे, पागल हुए हुए थे, तुम्हें किसी का एहसास नहीं था। ये तो इंसानियत नहीं है ना, इंसानियत तो ये है कि देखें अभी हमने क्या पढ़ा, गैर मुस्लिम भी है तो उसके ऊपर भी खर्च करो, कोई मजबूर है तो उसके ऊपर भी रहम खाओ। ये कौन सी इंसानियत है कि तुमने चाहे जो मर्जी हो, हमें हमारे पैसे चाहिए, तो तुम पैसे के पीछे खपती हुए हुए थे, पैसे के पीछे लोगों का गले घूंढ रहे थे, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठा रहे थे, तो ये देखो आज तुम्हारा भी यही हाल है। ذالک بھی انہم قالوا انما البيع مثل الربا, और इनका सिर्फ, नॉट ओनली कि ये सूद खाते थे, इनका ये हाल पता है क्यों हुआ है? देखिए एक होता है जुर्म करना, याद रखें बात ये, एक होता है गुनाह करना, कोई अल्लाह की नाफरमानी करना, नंबर टू एक सेकंड गुना होता है उसको जस्टिफाई करना, उसको कहना नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते थे, जालिका, ये क्यों हुआ, ये इनको सजा क्यों मिल रही है, नॉट जस्ट कि इन्होंने रिबा खाया, बल्कि इस वजह से कि वो कहते थे इन नमल बई उमिसलो रिबा, तिजारत भी तो सूद की तरह ही है, तिजारत में भी तो आप यहां से लेते हैं $10 की चीज और आप $20 की बेचते हैं अपनी दुकान पे खड़े होके, हमने कौन सा कोई ऐसी बुरी बात की है, समझे आप बात। ये नहीं कह रहे कि रिबा भी तो तिजारत की तरह है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, लो आप इस चीज को बुरा कह रहे हैं, फिर वो भी तो है, फिर वो भी तो गलत है, फिर आप वो भी तो उस चीज को भी तो देखें। तो ये भी कह रहे थे तुम हमें सूद से कहते हो कि सूद गलत है, तो फिर तिजारत भी गलत है, ठीक है फिर तिजारत भी तो सूद की तरह ही है। यानी दीन के ऊपर बात बता लगाना, एतराज करना, अल्लाह के अहकामात पे एतराज कर रहे हैं, शरीयत पे एतराज कर रहे हैं, समझ आई बात आपको। तो इनके दो गुनाह हो गए, एक ये खाते थे, दूसरा उसको जस्टिफाई करते थे, ये कैसे तुम हमें कह रहे हो सूद को हराम करने का, तिजारत भी तो सूद ही है, फिर तुम लोग भी गलत करते हो, फिर हमें किस तरह तुम मना करते हो। अल्लाह अकबर। तो आप ऐसा करें, तिजारत एक तरफ लिखें और सूद दूसरी तरफ लिखें, दो कॉलम्स बनाएं और एक कॉलम में लिखें कि तिजारत में क्या होता है, दूसरे में लिखें सूद में क्या होता है, ठीक है। आप देखें ये बजाहिर तो बात ऐसे कहते थे कि हाँ देखें वाकई इंसान सोचता है, हाँ वाकई वो भी तो $10 की चीज लेके 20 की बेचता है, तो वो भी तो फिर रिबा ही हो गया, तो इसमें क्या बात है कि किसी ने किसी को कर्ज दिया उसको कह रहा है मुझे मैंने 10 तुम्हें डॉलर दिए, तुम्हें मुझे 20 चाहिए वापस, तो इसमें क्या बात है। तो नहीं, तिजारत में इंसान का रिस्क होता है, हमेशा तो मुनाफा नहीं होता। कौन सा ताजर है, किसी बिजनेसमैन को पूछे कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो कहता है कि 100% मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, मगर सूदखोर को हमेशा फायदा ही फायदा होता है, ऑलवेज, कभी भी उसको नुकसान का खतरा है ही नहीं। वो कुछ भी नहीं उसने करना, बस उसने पैसे दिए, अब उसको पता है कि मैंने 10 दिए तो मुझे 20 मिलेंगे। अच्छा, फिर तिजारत में कभी भी फिक्स्ड प्रॉफिट की जमानत नहीं होती, सूद में हमेशा फिक्स्ड प्रॉफिट की जमानत होती है। वो सूद पे देते हैं ना चीजें, यहाँ पे कहते हैं कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर है, ये 10% इंटरेस्ट पे है, कौन सी तिजारत ऐसी है जिसमें वो कहें कि मुझे इतना ही मुनाफा होगा मेरे इस महीने, आप जो बिजनेस वाले लोग हैं वो बताएं किस महीने, आप महीना स्टार्ट करते हुए कहते हैं इस महीने मुझे 10% प्रॉफिट होना है, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं। तिजारत में नंबर 3 पॉइंट लिखे, तिजारत में मेहनत लगती है, वक्त लगता है, आपकी जहानत लगती है, सूद में कुछ भी नहीं लगता, ना कोई मेहनत है, ना कोई वक्त है, ना कोई जहानत है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो तिजारत में क्या है, इंसान यानी कि एक्टिविटी होती है, सूद में क्या है, बेकारी। जैसे बाज लोग बेकार रहना पसंद करते हैं ना, तो किसी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, वो कहते हैं बस मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना कमा लूं उसके बाद बैंक में रख लूं और फिर आराम से बैठ के खाऊं, तो सूद क्या करता है, बेकारी, ठीक है। सूद के अंदर कभी भी, सूद के अंदर कभी भी इंसान को फायदा यानी एक्टिविटी करने का नहीं जरूरत पड़ती, मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ती। तिजारत में सिर्फ एक ही बार फायदा होता है, जबकि सूद में क्या होता है, मुसलसल फायदा होता रहता है, मुसलसल कंटिन्यूस फायदा, ठीक है। एक दफा होता है ना तिजारत, सूद में क्या होता है, और मैं अब उसे नहीं दिया गया तो अब और रेट बढ़ा दिया, और रेट बढ़ा दिया, पहले 10% के ऊपर वापस देना था, अब उसके बाद 12% हो गया, अब उसके बाद 15% है, मेरे ख्याल में उसको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, शायद जो फाइनेंस वाले लोग हैं उन जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट शायद वो होता है कि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पहले 10 के 20 देने थे, फिर 10 के 25 देने हैं, फिर 10 के 50 देने हैं, इस तरह से। तो इस तरह से इस चीज के अंदर यानी तिजारत में अगर दो लोग शामिल हो ना, तो दोनों नफा नुकसान में शामिल होते हैं, जबकि सूद में जो कर्ज लेने वाला है वो ही सारे लॉस का जिम्मेदार है, अगर उसको कितना भी नुकसान हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी से कर्ज लिया, अब उसने जाके किसी बिजनेस में लगाया, मिसाल के तौर पे 1 लाख कर्ज लिया था, बिजनेस पे लगाया, बिजनेस गया डूब, अब कर्ज देने वाला उसके लॉस में शामिल नहीं है। याद रखें यही रिबा होता है कि वो ना प्रॉफिट ना लॉस में किसी में शेयर नहीं करता। तिजारत में जब दो लोग ट्रेड करते हैं मिलके, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर होता है ना, दोनों को मुश्किल होती है। अगर एक स्लीपिंग पार्टनर भी है, वो अपनी एनर्जी नहीं भी लगा रहा, लेकिन उसने जब पैसा लगाया तो अगर पैसा डूबेगा तो दोनों का ही डूबेगा। लेकिन इसमें सूद में क्या होता है कि सूद देने कर्ज देने वाले को कभी भी नहीं, मैंने आपको बताया ना, कभी भी नहीं उसको नुकसान होता। वो ही डजंट केयर कि दूसरे का सारा ही माल, वो जो लाख लगाया था सारा का सारा ही डूब गया, उसको बस 1,10,000 ही चाहिए वापस। तो वो लॉस में कभी शेयर नहीं करता, ना प्रॉफिट ना लॉस में, वो कहता है बस मुझे इतनी फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तिजारत में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट लॉस शेयर होता है। तिजारत से माल की सर्कुलेशन होती है, सूद से एक एक बंदे के पास जमा हो जाता है, एक ही बंदा ना जो देता है ना, वो ही अमीर से अमीर होता जाता है, क्योंकि उसको हमेशा ही फायदा होगा ना। देखें जो देने वाले हैं उसको हमेशा फायदा होगा, वो अमीर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक बंदा पिसता जा रहा है पिसता जा रहा है पिसता जा रहा है। एक तो उसको वापिस करना है तो सूद समेत करना है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है 10% प्रॉफिट ना हुआ हो, 5% हुआ हो, 5 वो अपनी जेब से देगा, किसी महीने हो सकता है कोई भी ना फायदा हो, फिर भी अपनी जेब से निकाल के देगा। तो वो तो गरीब ही होता जा रहा है और एक अमीर ही होता जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि बॉडी जो है, जैसे कि आपकी बॉडी है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करे तो तब आप हेल्दी रहते हैं, या एक जगह जम जाए तो तब हेल्दी रहते हैं? सर्कुलेशन चाहिए ना, इसी तरह वेल्थ की भी सर्कुलेशन चाहिए होती है कंट्री में। अगर वेल्थ सर्कुलेट करेगी तो तब फायदा होगा, और अगर सारा सरमाया सारा पैसा चंद हाथों के अंदर आ जाएगा तो बैलेंस नहीं रहेगा सोसाइटी के अंदर, वहां पे क्राइम भी होगा, चोरी डाके, क्योंकि हैव और हैव नॉट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सारा कुछ है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। आज अपने ममालिक का हाल देखें, वहां पे क्या चल रहा है, ऐसे ही है ना। और कुछ कंट्रीज भी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों को सूद के ऊपर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद वो इसी तरह उनका खून चूसते हैं। अब उन कंट्रीज को आपको पता है वो कौन कौन से मुल्क हैं जो बड़े बड़े ममालिक हैं, फिर आप सोचते हैं वहां पे तो बड़ी खुशहाली है, वहां पे तो बड़ी अच्छा है। तो बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस्ती हो जहां पे आदमखोर लोग रहते हो, आप जाके वहां पे देखें सारे ही आपको मोटे ताजे नजर आएंगे, लेकिन आप कभी उसको अच्छा कहेंगे? दूसरी बस्ती में जाएं वहां पे देखें सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, मुर्दा लोग पड़े हुए, क्योंकि इन्होंने जो पहली बस्ती वाले हैं उन्होंने इनको खा लिया। आप क्या कभी इंसाफ समझेंगे, इसको अच्छा समझेंगे? बिल्कुल यही हाल है वो लोग जो कर्ज देते हैं सूद के साथ, वो समझ लें खा रहे हैं उनको। एक तरफ कुछ लोग हैं जो, कुछ मुल्क हैं जो बिल्कुल पिस चुके हैं, और एक तरफ वो हैं जो मोटे ताजे होते जा रहे हैं। अब इस मोटे ताजे होने को भी कोई हेल्थी ना समझे, इसलिए कि ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान है ना, वो स्वेलिंग उसके ऊपर हो जाए, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाए, तो आप क्या उसको अच्छा समझेंगे? नहीं, वो तो बुरी है ना। तो वो फूल जाना उसका ये नहीं है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये बीमारी है। तो ये सूद भी ऐसी चीज है। तो सूदी निजाम में, जहां पे भी सूदी निजाम होगा वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा माशरे के अंदर, लोगों के उसमें वेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो सूदखोर हमेशा मेहनत करने की बजाय बैठ के रहना खाना पसंद करता है, बेकारी की फिजा पैदा हो जाती है माशरे में। और तिजारत वाला देखिए मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, कुछ लगा रहा है। और बाकी आप इसके डिफरेंसेस लिख लें और भी, कि क्या फर्क है, या आप अपना होमवर्क समझे। लेकिन सबसे बड़ी एक बात क्या है, वह अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रम रिबा। हम कोई भी पॉइंट ना लिखें तो क्या एक पॉइंट काफी नहीं है कि बस सब चीजों के ऊपर एक चीज ने मुहर लगा दी, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आता ना कि क्या फायदा है, ये क्या डिफरेंस हुआ जी, एक ही बात तो हो गई, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो सेम ही है जी। नहीं, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। अब बात ही यहां पे जाके खत्म हो जाती है, अब इसके आगे कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता, क्योंकि जिस चीज को क्या एक मोमिन के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि मेरा अल्लाह ने हलाल कर दिया एक चीज को तो बस वो हलाल है, और एक चीज को हराम कर दिया, अब हम उसको हलाल नहीं कर सकते। तो एक चीज मुमकिन है, अल्लाह के यहाँ हराम हो और इंसान सोच रहे हो कि इसके अंदर बड़ा फायदा है। आज बाज लोग इसके ऊपर बड़ी दलीलें देते हैं कि नहीं जी, सूद की वजह से तो ये हो रहा है, सूद की वजह से तो फलाना हो रहा है और ऐसे हो रहा है। याद रखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत पे मबनी है, राइट? हम ये सब जानते हैं ना, हिकमत है उसके अंदर। और हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिए, नहीं, हमें शायद उसका फायदा सामने नजर ना आ रहा हो, हमें शायद हमारी अकल फिर अपनी अकल पे ही मातम करें कि मेरी अकल इतनी नहीं है। आप देखें, इस तरह तो आप कहें चोरी का भी तो फायदा है, डाके का भी तो फायदा, देखें कुछ घर तो चल ही रहे हैं ना उसकी वजह से भी, लेकिन हर कोई कहेगा नहीं, इसमें नुकसान है, ये बुरी चीज है, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम करार दिया ना, शराब के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए कुछ नफा है मगर इसका गुना बहुत बड़ा है, हमने पढ़ा है ना ये, तब इस वजह से हम ये तो नहीं कह देंगे कि नफा तो है ना कुछ, ये नहीं कह सकते हम। कोई भी चीज, सांप वगैरह जो है ना, इनका भी कुछ ना कुछ तो फायदा है ही, दुनिया इसमें इस कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज के कोई फायदे तो बनाए ही हुए हैं ना, कोई चीज भी बेफायदा तो है नहीं। तो अब आप इस तरह से लेके बैठे हैं, आप कहेंगे इसमें भी फायदा है उसमें भी फायदा है, तो सूदखोर को का भी हमें कुछ वक्ती फायदा एकदम से नजर आता है कि हाँ देखिए इसका भी तो घर चल रहा है इससे, लेकिन दुनिया का भी और आखरत का भी इतना बड़ा नुकसान है कि वो इस फायदे के मुकाबले में जो है ना वो बहुत बड़ा है और हमेशा का है, ठीक है? तो इसलिए अल्लाह ताला ने हलाल किया, और अल्लाह ताला अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता है ना, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ऐसे रब से आप क्या ये चीज की तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके फायदे की चीज को तो आपसे रोक दे और फायदे की चीज को हराम कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। तो मोमिन के लिए तो समय ना हुआ था ना, मोमिन के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है, वो तो कभी भी आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं, बस अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया हराम और रिबा, रिबा हराम है, तो अब इसके बाद क्या बात है। लेकिन मसला यही है कि जैसे यहूद ने कई चीजें जो उनके ऊपर हराम थी, वो हीले करके, बहाने करके, एक्सक्यूजेस करके, और उनको हलाल कर लिया अपने लिए कि नहीं ये तो इस तरह है, और सब्त वालों का किस्सा आपने पढ़ा है, इसी तरह आज मुसलमानों ने हलाल कर लिया। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, तो जो कोई आ जाए इसके पास एक नसीहत उसके रब की तरफ से, जब नसीहत आ पहुंची है उसके रब की तरफ से, ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ने हराम कर दिया है, तो अब इसके बाद क्या है। फलहू मा सलफ, तो उसके लिए जो गुजर चुका, जो हो चुका वो तो हो चुका, अब जो उस हो चुका है उसके ऊपर तौबा करे, अब वो तो गुजर चुका है, वो नहीं कहा गया कि अभी वो वापस दो, नहीं, वो तो जो खा चुके अब वो गुजर चुका है। वह अमरुहू इल्लाह, उसका मामला अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ताला चाहे क्यामत के दिन माफ कर दे, चाहे तो पकड़ ले उसके ऊपर, लेकिन जो रुक जाए इसके बाद, उसके लिए जो गुजर चुका है बस वो हो चुका है, जो खाया वो हो गया, अब आखरत में इसका फैसला होगा। वह मन आदा, और जो कोई लौटे, जो कोई फिर भी बाज ना आए, फाउलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, वो आग के साथी हैं, आग वाले हमेशा रहने वाले हैं इसमें। कितनी बड़ी सजा की तरफ बात की गई, ये नहीं कहा गया कि जो काफिर हैं और ये करें, काफिरों के लिए तो देखें ये अहकामात है ही नहीं, ये किसके लिए है, मुसलमान के लिए, है ना, कुरान मुसलमान के लिए ना उतर रहा है ना, यहाँ ये लदीना आमनू भी आगे आया, काफिर तो कहता ही नहीं है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, इसलिए उसके तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है एक ऐसे बंदे की जो अपने आप को मोमिन कहता है। तो वो मोमिन जो है फिर दोबारा यही काम अगर करेगा तो वो उस आग के साथी हैं, हमेशा वहां रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में कुछ लोगों को देखा था जिनके पेट बड़े बड़े घरों की तरह है, पूछा ये कौन लोग हैं, बताया गया सूद लेने वाले, और एक रिवायत में ये है कि उनके पेटों में सांप भरे हुए थे जो उनको डसते जा रहे थे। आप सोचें इंसान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि एक कमरे के अंदर सांप आ जाए या एक घर में आ जाए ना, देखा भी नहीं हो इंसान ने तो उस घर के अंदर नहीं खड़ा होगा, बाहर भाग जाएगा, और कहां किसी के पेट के अंदर सांप, छोटे छोटे कीड़े हो जाए ना किसी के पेट में तो वो चैन नहीं लेने देते, और कहां सांप भरे में हो पेट में जो उसको डस रहे हैं। और एक हदीस में ये है कि जो मेराज की ही हदीस है कि हम जब एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे जिसका पानी खून की तरह था सुर्ख, तो मैंने देखा उसमें कुछ लोग हैं मुश्किल से वो किनारे पे आते हैं, वो यानी कुछ लोग हैं वो उस नहर के अंदर हैं खून की जैसी जो नहर है, तो एक फरिश्ता बहुत से पत्थर लेके बैठा हुआ है, वो उनका मुंह फाड़ के एक पत्थर उनके मुंह में उतार देता है, वो फिर भागते हैं, फिर यही होता है, फिर वो किनारे पे आने के लिए निकलने के लिए कोशिश करते हैं, तो जब वो करीब आते हैं ना तो वो फरिश्ता पत्थर उनके मुंह में डाल दो। तो पूछा ये कौन लोग हैं, बताया गया ये सूदखोरों का ग्रोह है, इन पे ये बवाल इसीलिए है ना कि ये देखें रिबा को हराम समझते ही नहीं थे। देखिए ना समझने का क्या नुकसान होता है, किसी भी गुनाह को गुनाह अगर आप नहीं समझते और आप आर्ग्यूमेंट करते हैं नहीं जी ये तो इस्लाम के अंदर ऐसे नहीं, नहीं जी ये तो उस जमाने के अंदर होता था, नहीं जी आज ये, चाहे आप सूद का मामला ले लें चाहे किसी और चीज का भी, अगर आप ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और कुरान में वो है, लेकिन आप उसको खुद दलीलें दे के तावीलें करके ऐसे ऐसे लोगों के फतवों के पीछे जाते हैं जिनका आपको पता है कि ये इस चीज को जायज कर देंगे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अपने दिल से फतवा पूछ लो तो लोग चाहे जो भी फतवा देते हैं। तो अगर आप किसी हराम चीज को हलाल करने की कोशिश करते हैं ये इतना सख्त बड़ा गुनाह है, इसलिए कि एक तो वो बंदा कभी भी उस गुनाह को छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो उसको बुराई नहीं समझता, हलाल समझता है ना, हलाल समझ के कर रहा है, हराम समझता ही नहीं, तो एक तो उसने अल्लाह के कानून को डिनाई किया, अल्लाह के कानून को का इनकार किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, ठीक है। नंबर टू क्या बात है कि उस इंसान को तौबा की भी तौफीक नहीं मिलती, तौबा कर ही नहीं पता कि तौबा किस बात पे करे, ये तो हलाल है तौबा क्यों करूं। तो ये एक यानी एक तो गुनाह करना ऊपर उसे उसके ऊपर इसरार करना ये एक और डबल गुनाह हो गया, तो कभी भी कोई गुनाह कर रहा हो इंसान तो उसके ऊपर नादिम रहे, शर्मिंदा रहे, उसके ऊपर उसके दिल के अंदर गिल्ट रहे, उसके ऊपर तौबा करता रहे, उसके ऊपर शर्मिंदा होता रहे, ये नहीं है कि उसके ऊपर ढीठ बन के आगे से ये कहना शुरू हो जाए नहीं ये तो है ही नहीं। तो ये असहाबुन्नार हैं, और इसके अलावा भी अहादीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये इतनी बड़ी बात है कि सूद के 73 गुनाह हैं जिसमें से सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे, सबसे हल्का, इतनी बड़ी बात है, लेकिन ये ऐसी बड़ी बड़ी तो किसी गुनाह पे भी नहीं आई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 बड़े गुनाहों से बचो, कबीरा गुनाह जो होते हैं ना कबीरा गुनाह, उनमें 7 बड़े गुनाहों से बचो, और उनमें एक बड़ा गुनाह कौन सा है, यहाँ पे शिर्क की बात आती है यहाँ पे, और वहां पे क्या है सूद खाना, ये 7 मोहलिक गुनाह हैं जो हलाक कर देने वाले हैं, जो इंसान की हलाकत का बायस बनने वाले ना वो हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं कि उनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने पर लाजिम कर लिया कि उनको कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और जन्नत की ना नेमतें चखने देगा, कौन है? शराब का आदि, सूद खाने वाला, यतीम का माल नाहक खाने वाला, और वालदेन की नाफरमानी करने वाला। इनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अब हम कितना बुरा समझते हैं शराबी को, कितना बुरा समझते हैं यतीम का माल खाने वाले को, लेकिन इसको नहीं बुरा समझते कि सूद खाना एक बुराई है। और फिर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 1 रुपया खाना, 36 बार जिना करने से भी बदतर है। 36 टाइम जिना करने से, वो कोई जानी का पता चल जाए तो इंसान ने कहता है कि देखो ये तो जानी है, और 1 रुपया खाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन गुनाहों से बचो जो माफ नहीं किए जाएंगे। इसीलिए यहां पे फरमाया ना, हम फीहा खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया ना, अल्लाह की एक हुक्म का इनकार, एक आयत का इनकार भी कुरान का इनकार है। तो फरमाया, उन गुनाहों से बचो जो माफ नहीं किए जाएंगे। पहला है माले गनीमत की चोरी, और दूसरा है सूद खाना। फिर एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कौम में सूद के लेन देन का रिवाज हो जाए तो अल्लाह ताला इन पर जरूरियात जिंदगी की गरानी कर देता है, यानी महंगी हो जाती है जरूरियात जिंदगी। तो आज देखें, जहां पे सूद का लेन देन का रिवाज है, जरूरियात जिंदगी कितनी महंगी हो गई, और जहां पे रेट ज्यादा है सूद का, वहां पे उतनी ज्यादा महंगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है, अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पे, खिलाने वाले पे। यानी एक होता है ना लेने वाला, और एक है देने वाला। तो यहां पे दोनों पे लानत है, लेने वाले पे भी देने वाले पे भी। नंबर 3, लिखने वाले पे। जो लोग सूद को लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, चाहे वो बैंक में है चाहे वो कहीं है, लिखना इंटरेस्ट का। इसीलिए कोशिश करें कि अभी से, कि जिनके बच्चे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो ऐसे प्रोफेशन से बचें जहां पे सूद लिखा जाता है। और इसी तरह उन दोनों गवाहों पे भी अल्लाह की लानत है, जो गवाही देंगे ना उन पे भी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब बराबर हैं। हालांकि लिखने वाला तो सिर्फ हिसाब किताब कर रहा है, ना ले रहा है ना दे रहा है, गवाह जो है वो सिर्फ सिग्नेचर कर रहा है कि मैं विटनेस हूं। तो सब के ऊपर लानत है, और सोचें ये सारी वहीदें सबके लिए हैं, क्योंकि सारे ही बराबर हैं। वह देख लें कि जन्नत की झलक भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो आग में ही पड़ा रहेगा। यही काफी है किसी के लिए भी ये छोड़ने के लिए सूद के वो असहाबुन नार है और हम फीहा खालिदून है। क्या जिसको जहन्नुम का यकीन है, कि जिसको कयामत का यकीन है, जिसको अल्लाह के फैसलों पे, इस कुरान पे यकीन है, क्या वो ईमान लाने के बावजूद क्या फिर भी इस चीज में पड़ा रह सकता है? वो कितनी शिद्दत है इस हुक्म में, कितनी शिद्दत है। और ये भी नहीं इंसान कह सकता अभी खा लो फिर बाद में तौबा कर लेंगे, तो फिर वो तो तौबा कर ली तो फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, किसी को भी हुक्म सुनाने से पहले अगर जो है ना अभी उसको नहीं पता था, तो जो फिर हो चुका वो हो चुका। जब ये हुक्म पता चल गया तो उसके बाद कोई भी बंदा नहीं है जो कि ये करता रहे, क्योंकि जो करता रहेगा, अदा करता रहेगा, लौटेगा बार बार, तो फिर उसके लिए आग है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला मिटाता है रिबा को, सूद को अल्लाह मिटाता है। और किसको बढ़ाता है? युर्बिस सदकात, सदकात को बढ़ाता है। अब यह आ गया ना इल्मे गैब की बात आ गई यहां पे। आप देखें, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। अब ईमान बिल गैब तो यही है ना कि हम इस पे यकीन कर लें। हालांकि हमें नजर क्या आ रहा है, हमें नजर ये आ रहा है कि हम बैंक में रखते हैं जी, हमने लाख डॉलर रखा, और उसके बाद अगले महीने वो 1,01,000 हो गया, उससे अगले महीने 1,02,000 हो गया, तो मेरा तो माल बढ़ रहा है, घटका बढ़ रहा है, इसने कहा घट रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे तो इतनी सेविंग हो रही है, मैंने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो आप कहते हैं कि नहीं, अल्लाह मिटाता है, मिटाने का मतलब क्या है? मैंने एक बात आपको क्या कही कि बिल्कुल अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है उसको। और वाकई जो अल्लाह की बात है वो सच्ची है, जो मेरी आपकी बात झूठी हो सकती है, अल्लाह की बात नहीं झूठी। और दूसरा है जाया कर देता है। देखें दोनों बातों को हम देखते हैं, एक है ना मिटा देना, अब मिटाने के अंदर क्या आ सकता है? हो सकता है कि पूरा का पूरा जो उसका है कहीं ऐसा उसने रखा, आग लग गई उसकी चीज को, या कहीं डाका पड़ गया, या कोई ऐसी चीज हो गई, खत्म हो गया बिल्कुल। आखिरत में तो बिल्कुल ही नहीं ना उसको मिलना, आखिरत में तो बवाल ही बवाल है, दुनिया का मैं बता रही हूँ, दुनिया में भी इसका मुशाहिदा होता है, आखिरत में तो मिट्टी गया, आखिरत में तो कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि उल्टा उसके लिए मुसीबत बन जाना है। सदका खैरात करने वाले का आखिरत में माल क्या बढ़ता है ना, जो हमने हदीस पढ़ी भी हुई है कि एक खजूर को भी अल्लाह ताला ओहद पहाड़ के बराबर कर देगा, तो बड़ा ना, तो आखिरत में तो सदका बढ़ रहा है, वो तो हमारा ईमान है, और सूद का तो कुछ नहीं मिलना, उसकी तो सजा है। लेकिन दुनिया में कैसे है कि माल खुद हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कि क्या नहीं आप देखें डूब जाता है कई दफा, कहीं दिवालिया हो गए, बड़े बड़े सरमायादार आपने देखा कि दिवालिया हो जाते हैं, फौरी तौर पे ऐसे लगता है कि बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ना बाकी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि औलाद में या नस्लों में इंसान का ये होता है ना हमेशा कि मैंने इतना बना लिया है जी, मेरी तो नस्लों तक चलेगा, मेरी तो नस्लें आप बैठ के खाएंगी। नहीं, ऐसी कोई आफत आ जाती है, वो सब बर्बाद हो जाता है, नस्लों में नहीं चल सकता। इसीलिए हजरत मुअम्मर ने फरमाया कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि सूदखोर पे 40 साल गुजरने नहीं पाते कि इसके माल पे कोई घाटा आ जाता है, महाक आ जाता है, मिट जाता है ना बिल्कुल, 40 साल नहीं गुजरने पाते। थोड़ा हो सकता है उस वक्त के लोग तो थोड़ा बहुत फायदा उठा ले, मगर नहीं, नॉट फॉर लॉन्ग। और अगर जाहिरी तौर पे माल आपको नहीं भी बर्बाद होता नजर आ रहा ना, तो उसकी बरकत खत्म हो जाती है, बरकत से महरूम होते हैं, कि बरकत एक ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते, याद रखें, बरकत सिर्फ महसूस की जा सकती है। सूदखोर का माल चाहे बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो जो इंसान के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, तो आपको ऐसे लगता है कि बहुत कितना बड़ा जिस्म हो गया, लेकिन वो बड़ा अच्छा नहीं है, वो तो बल्कि बीमारी है। तो ये जो उसके पास इतना बढ़ गया है ना, उससे अल्लाह ताला ने बरकत खींच ली है। अब क्या होगा, वो ही माल हो सकता है कि कोई बीमारियों के अंदर खर्च हो जाए, मुकदमात में खर्च हो जाए, ऐसी चीजों में खर्च हो जाए, दूसरे लोगों के ऊपर वो बीमारियां आई ना जिन्होंने हलाल से कमाया, अल्लाह उनको बीमारी से महफूज रखे, इसके ऊपर ऐसी बीमारी लाद दी कि वो सारा माल बीमारी में ही चला गया। हो सकता है किसी मुकदमे में अल्लाह ताला ने ऐसा डाल दिया कि मुकदमों में ही चला गया, हो सकता है कोई ऐसी और आफत आ गई कि इंसान का माल वहीं लगता जा रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत खींच लेते हैं। वही काम जो उसका 1,000 से हो सकता था, वो 10,000 से हो रहा है, या कहीं इतना आपने कहीं स्पेंड करना था, वो ऐसा आपको पेनल्टी पड़ गई, अब आपको 1,000 आपने देने थे, वहां पे 1,500 देने पड़ गए, 500 का घाटा आपको बेकार का होगा, वो बेकार नहीं था, वो सूद की वजह से, तो बरकत चली गई। वही एक हलाल खाने वाले का वही काम थोड़े में हो जाता है, जो सूद खो रहा है उसका बहुत ज्यादा में होता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं, तो बरकत नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला उसमें से राहत खींच लेता है, उसको राहत नहीं मिलती, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे होते हैं, खाने पीने की सहूलियात हैं, और लग्जरीज हैं, नौकर चौकर हैं, शानो शौकत है, अब दूसरा बंदा देख के कहता है वाह आप तो कहते हैं कि रिबा से ये होता है वो होता है, लो हमने तो उनको देखा इतने माशाल्लाह, बहुत उनका तो कारोबार ऐसा, उनका तो ये, उनका तो वो, सोने चांदी के अंदर खेल रहे हैं, वो तो इस तरह है, लेकिन जिस चीज का नाम सुकून है, दिली खुशी है, इत्मीनान है ना, वो ना किसी फैक्ट्री में मिलता है, ना किसी बाजार में बिकता है, ना ना कहीं नरम बिस्तरों में मिलता है। वो एक ऐसी रहमत है जो अल्लाह ताला खुद दिलों में डालता है। बाज दफा आप लाखों का सामान घर में रखते हुए भी एक नींद की राहत को देख लें। तो नींद नहीं अगर आ रही ना, तो चाहे आपका बिस्तर जो है वो लाखों का आपने खरीदा हुआ और उसके ऊपर गद्दे भी इतने महंगे और तकिए भी इतने महंगे, लेकिन क्या नींद का आ जाना इन सामानों के साथ हो सकता है? इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जमीन पे पड़े होते हैं और आराम से सो रहे होते हैं सुकून की नींद, और ऐसे लोग जो होते हैं वो कई स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं, और कई स्लीपिंग पिल्स से भी नहीं कईयों को आराम मिलता। नींद के सामान तो आप बाजार से ला सकते हैं, मगर नींद आप किसी बाजार से नहीं ला सकते खरीद के। तो इसीलिए आप देखें कई बहुत, जैसे यहाँ पे भी अमेरिका में भी 75% लोग जो है ना वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सो नहीं सकते। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ पे तो बड़ी ऐश है, आराम है, ये है वो है। क्या ऐश आराम है? एसी लगे हुए हैं, नरम बिस्तरे हैं, लग्जूरियस घर हैं, फिर भी सुकून नहीं। तो सूदखोर के पास सब कुछ भी हो जाए ना, मगर सुकून नाम की चीज नहीं होती, राहत नाम की चीज नहीं होती। वैसे भी देखें वो इतना पागल हुआ होता है, अगर उसके पास करोड़ है तो उसने 1.5 करोड़ बनाना है, 1.5 करोड़ है तो 2 करोड़ बनाने। उस समय वो इतना पागल हो जाता है कि ना उसको खाने का होश, ना पीने का होश, ना बीवी बच्चों का। यहाँ पे फैक्ट्रियां चल रही हैं, यहाँ पे मिलें चल रही हैं, यहां जाना है, वहां जाना है, बिजनेस का ये चीज है वो चीज है, दीवानों की तरह होता है, और सामान सारा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन राहत का सामान होने के बावजूद राहत ही नहीं है उनको। तो इसलिए अल्लाह ताला मिटाता है या अल्लाह जाया कर देता है रिबा को और बढ़ाता है सदकात को, सदके को अल्लाह बढ़ाता है। सदके के जरिए जब इंसान सदका करता है, जो ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे गरीबों की जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा होगा, वहां पे कितनी हारमनी होगी, वहां पे इंसान को कितना दिली सुकून होगा। आप देखेंगे ये आजमा के बाद आप देख सकते हैं कि सुभान अल्लाह, जब आप खुद कोई चीज लेते हैं तो तब इतना सुकून नहीं मिलता, लेकिन जब आप देते हैं ना किसी को तो तब जो खुशी मिलती है वो खुशी अल्लाह डालता है ना। वो कहां से वो खुशी आती है? हालांकि आपने दिया, आपके हाथ से गया, लेकिन वो जो खुशी, जो इत्मीनान, जो सुकून होता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो जहां पे भी सदकात का रिवाज होगा वहां पे हार्मनी होगी, वहां पे पीस होगा, अमनो अमान होगा, और जहां पे सूद होगा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन होगी। ये एक स्कॉलर ने स्टैटिस्टिक से प्रूव भी किया था। इसीलिए आप देखें जब रिसेशन हुआ था तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है ताकि लोग और चीजें खरीदें। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन अथीम, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता किसी भी नाशुक्रे को, गुनाहगार को। इसकी नाशुक्री क्या है? इसकी नाशुक्री है कि ये सूद जिसको कि अल्लाह ताला ने मना किया था और सदके को करने का हुक्म दिया था, ये इंसान सूद खा रहा है और सदका नहीं दे रहा, यानी बिल्कुल उलट कर रहा है। अल्लाह ताला की ये नेमत है ना, अल्लाह की दी हुई नेमत है माल। अब माल का हक क्या था? दूसरों पे स्पेंड करना, सदका करना। तो इसने नाशुक्री की इस माल की, इसने लोगों से रोक दिया। और असीम गुनाहगार, गुनाहगार किस तरह से है? अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है ना, अल्लाह के साफ हुक्म को जान बूझ के तोड़ रहा है, ये जानता है फिर भी तोड़ता है। और इन लदीना आमन व आमिलु सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, नेक अमल किए, ईमान ला के, ईमान लाना क्या होता है, मान जाना अल्लाह का हुक्म, अल्लाह पे ईमान लाया तो अल्लाह के हुक्म भी तो मानने पड़ेंगे ना। तो जो अल्लाह के हुक्मों को मान जाता है और नेक अमल करता है, वाकामुस सलात, और उसने नमाज कायम की। नमाज का फायदा क्या होता है, नमाज आपके लिए 5 टाइम्स का रिमाइंडर है कि आप अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं हशर के मैदान में। 5 टाइम्स आपको रिमाइंड कराती, जैसे नमाज में खड़े हुए हो ना हाथ बांध के, इसी तरह एक दिन आएगा कि तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे, जहां कोई मददगार नहीं होगा। वह आता वो ज़कात, और जो देता है, जो उन्होंने जिन्होंने ज़कात दी, ज़कात देने के बजाय सूद देने के लिए, सूद खाने के, सूद पे कर्ज दे के, दूसरों की जरूरियात से फायदा उठाने के, तुम ज़कात दो। अगर ज़कात सही से मुस्तहकीन को दी जाए ना, तो किसी को सूद पे कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े। किसी यूरोपियन माहिर ने कहा था कि मुसलमानों का निजामे जकात ऐसी चीज है, अगर मुसलमान इसके वाकई इसको सही तरह से इसको प्रैक्टिस करें, तो इस कौम में कोई मुफलिस और मुसीबत ज़दा नजर ही नहीं आएगा। इसलिए कि जकात सिर्फ मुस्लिम्स को दी जाती है, सदका किसी को भी दे सकते हैं, जकात ओनली मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम से ही कलेक्ट होती है। तो जो जकात देते हैं, अब जो जकात देने वाला माशरा होगा, सारे ही लोग जकात देने वाले हैं, बड़े बड़े लोग जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतनी ही बड़ी जकात दे रहा है, तो मुझे बताएं वहां पे कहां से फिर ये होगा कि सूद के ऊपर कर्ज किसी को लेने की जरूरत पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी का माल सूद से ज्यादा होगा आखिरकार वो किल्लत की तरफ जाएगा। यानी बाज दफा एकदम दिवालिया नहीं भी होगा, लेकिन वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा, ये याद रखें। सूद को अल्लाह ताला मिटा देता है, जब उसने खुद ही फरमा दिया, तो फिर वो जब बताएं उस ऐसे बंदे का माल कैसे बाकी रह सकता है। सदका देने वाले के माल में भी बरकत होती है, उम्र में भी बरकत होती है, सेहत में भी बरकत होती है, और सूद वाले के ना माल में बरकत, ना उम्र में बरकत, ना सेहत में बरकत। तो रिजल्ट क्या हुआ, अल्लाह सूद को मिटा देता है, और सदके को अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन बढ़ाना और घटाना तो अल्लाह के हाथ में है ना, जब उसने खुद ही फरमा दिया तो फिर क्या। और ये जो 4 काम यहाँ पे कहेंगे हैं ना, ईमान, साले अमल, नमाज और जकात, बाज दफा सूदखोर ये 4ों काम करते हैं, कहते हैं हमने अल्लाह का हक तो दे दिया, अब ये हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, ये तो सूद के बगैर नहीं चलता। हालांकि दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, ठीक है, दीन सिर्फ ज़कात थोड़ी बहुत अदा कर देने का नाम नहीं है, दीन तो पूरा लाइफ स्टाइल है। ईमान ये नहीं है कि मैं मर्जी के काम तो मान लूं और जो मेरी मर्जी ना हो, मुश्किल लगे, वो ना मानूं, हर अल्लाह के हुक्म को मानना वो ही तो ईमान है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनको कोई खौफ नहीं होगा और कोई रंज नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, उनका अजर उनके रब के पास है। या अय्युल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। और अब फाइनल कह दिया, वदरू मा बाकी अमिन रिबा, छोड़ दो जो रिबा में से बाकी रह गया, अब इसको बस करो, छोड़ दो इसको। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था ना कि जाहलियत के तमाम सूद आज मेरे इन दोनों कदमों तले दफन कर दिए गए, और सबसे पहला सूद जो जिससे मैं दस्तबरदार होता हूँ वो हजरत अब्बास का सूद है। हजरत अब्बास भी उस जमाने के अंदर सूद पे कर्ज दिया करते थे, तो फरमाया कि उन्होंने कुछ लोगों को जाहिर है कर्ज दिया हुआ था, और कर्ज जब लौटाने का मामला आता तो सूद समेत लौटाना था। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब ये सूद के साथ वो लोग वापस नहीं करेंगे, बल्कि अब सूद को मैं खत्म करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने खानदान से शुरुआत की कि मैं अपने खानदान का सूद सबसे पहले माफ करता हूँ, यानी अब कोई किसी को भी सूद देने की जरूरत नहीं है। इस आयत का भी एक शान नजूल है। कहा जाता है कि सूद की हुरमत नाजिल होने से पहले आम अरब में सूद का रिवाज बहुत था, उनकी भी सूद पे सारी चलती थी। तो जब उसकी ममानियत आई तो मुसलमानों ने तो सूद के सारे मामला छोड़ दिए, लेकिन कुछ लोगों के मुतालबात सूद की बकाया रकमों के दूसरों पर थे। इसी में ये वाकया आया कि बनु सकीफ जो था एक कबीला और बनु मखजूम था, उनमें भी आपस में सूदी मामलात का सिलसिला था। तो बनु सकीफ के लोगों का कुछ सूदी मुतालबा बनु मखजूम की तरफ था। अब बनु मखजूम तो मुसलमान हो गए, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो सूद की रकम अदा करना जायज नहीं समझते, सूद तो हमारे यहाँ हराम हो गया। अब यानी इन्होंने कर्ज लिया हुआ ना, अब वो कहते हैं हम कर्ज वापस तो करेंगे लेकिन सूद समेत नहीं करेंगे। तो बनु सकीफ के लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया, वो तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अगर मुसलमानों से उनके साथ मुसालियत हो चुकी थी, उनके साथ टर्म्स थे, लेकिन मुसलमान तो नहीं थे। वो कह रहे थे हमें तो सूद चाहिए ना, वो तो काफिर थे। बनु मखजूम ने के लोगों ने कहा कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम अपनी इस्लामी कमाई को सूद की अदायगी में खर्च नहीं करेंगे। यहां से ये भी पता चल गया ना कि सूद देना भी हराम है। अब ये झगड़ा मक्का में पेश आया। उस वक्त मक्का के अमीर हजरत मुआज थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने ये इस मामले को भेजा कि ये इसका क्या किया जाए। इस पे ये कुरान की आयत नाजिल हुई कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद सूद के जितने भी पिछले इस इन हुक्म से नाजिल होने से पहले जितने मामलात थे ना सूदी, वो सब खत्म होगा। पिछला सूद ना लिया जाएगा ना अब सूद दिया जाएगा। ठीक है, अब ये है कि इसमें सबसे पहले जो जैसे मैंने आपको बताया हजरत अब्बास ने जो सूद के वो किया था ना, उन्होंने तो लेना था लोगों से, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कर दिया। अब क्या होगा, हर एक बंदे को उसकी असल रकम मिलेगी, जो सूद की रकम है वो नहीं मिलेगी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कितना प्यारा पहले फरमाया, ताकुल्ला अल्लाह से डरो। अब ये पता है ना कि ये चीज छोड़नी बहुत मुश्किल है, तो पहले लोगों को तैयार किया गया। डरने का मतलब ये नहीं है कि बस झुझुरी दे ली तो हम डर गए, आए बड़ा डर लगता है, नहीं। एक अपने जैसे इंसान का, ट्रैफिक पुलिस का डर तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी की ब्रेकें लग जाती हैं। तो अल्लाह जो तमाम जहानों का मालिक है, हम कहें कि हमें उससे डर लगता है और बस इतनी झुरझुरी आ जाए और हमारी ब्रेक ना लगे, क्या ये वाकई डर होगा? हम अपनी गलत कारियां ना छोड़ें, क्या ये वाकई डर होगा? एक टीचर के डंडे से डर के हम पूरा सबक याद करके जाएं और अल्लाह का डर हमें कुछ भी ना करवाए, हमारा अमल ही सीधा ना हो, तो क्या ये डर होगा? तो डर तो वो है जो इंसान को इतना फिक्रमंद कर दे, इतना परेशान कर दे कि उसकी रातों की नींद उड़ जाए और वो इस गुनाह को आखिरकार छोड़ दे, वो है डर असल में। तो अल्लाह ताला ने अपना डर दिलाया पहले, ने फरमाया अल्लाह से डर जाओ और छोड़ दो जो बाकी रह गया रिबा में से। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर वाकई तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम अपने आप को जो कहते हो ना हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, फिर तो तुमको कोई बहस ही नहीं करनी चाहिए। फिर तो कोई बहस की नहीं है, गुंजाइश है ना, फिर जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया वो तो दे दिया। तो अब तुम्हें अल्लाह से डर के बाकी तमाम सूद छोड़ देना चाहिए। फ़इल्लम तफ़ालू, और ये इतनी ज्यादा खौफ दिलाने वाली आयत है, इसके बाद तो फिर किसी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि वो कुछ और करे। इल्लम तफालू, फिर अगर ना तुम करो, फअदनू, तो खबरदार हो जाओ, सुन लो, ऐलान सुन लो, किस चीज का? बेहर बिन मिन अल्लाही व रसूली, जंग के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से। अगर तुम ना करो ये काम, अगर तुम फिर भी नहीं छोड़ते हो, इस हुक्म में देखें कितना जलाल है, कितना रोब है। ये किसी आम आदमी से जंग की बात नहीं है। हमें तो कहीं पता चल गया ना किसी मुल्क में ही जंग होने का सवाल, कि यहाँ पे कोई जंग का खतरा भी है, तो हम कैसे डर के वहां से भाग जाएं? लोग मूव हो जाते हैं, स्टॉक मार्केटें गिर जाती हैं। हालांकि इंसानों के इंसानों से अभी जंग नहीं हुई होती, अभी सिर्फ खतरा होता है। और ये तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, जिसका ईमान हो ना वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह और उसके रसूल से जंग, वो रसूल जिनके भरोसे पे बैठे हैं कि इन्होंने शिफात करानी है, और वो अल्लाह जो रब्बे कायनात है, उसके मुकाबले में क्या कोई आ सकता? इस जंग में सोचिए, एक तरफ कौन है, ये हकीर कमजोर सा इंसान, और दूसरी तरफ रब, जिसके हम हर हर लम्हा मोहताज हैं, और जिसके इज़्ज़त के बगैर इंसान एक सांस तक भी नहीं, ना अंदर लेके जा सकता ना बाहर ला सकता। और तुम समझती हो कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारी कहाँ हिम्मत है, सोच भी नहीं सकते। और वो अल्लाह जिससे हमें हर पल कोई हाजत है, कोई जरूरत है, और उसके आगे हम हाथ उठाते हैं, अगर उसी ने जंग का ऐलान कर दिया, हम किसके पास जाएं? इसीलिए तो फिर दुआएं नहीं कबूल होती। उसने तो जंग का ऐलान किया हुआ है, उसी से आप मांग रहे हैं। एक तरफ ये हाल होता है, कुरान ऐलान कर रहा होता है जंग का, दूसरी तरफ हम अल्लाह रसूल के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, नाते पढ़ रहे होते हैं, मिलाद हो रहे हैं, अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, कुरान खानियां करा रहे हैं, और ये पता नहीं है जो कुरान पढ़ रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जंग है तुमसे, और लोग मुबारकबादें दे रहे होते हैं। आपने, वाह भाई वाह, क्या कारोबार, क्या इनकी सज धज है, और क्या इनके घर है, और क्या इनकी शानो शौकत है। किसी की सूद पे ली हुई चीज को देखकर हम कैसे खुश होते हैं ना, ये नहीं सोचते कि इसने अल्लाह रसूल से जंग ले ली है। एक तरफ अल्लाह अपने हथियार लेके आ गया, और उसको तो ना किसी हथियारों की जरूरत, ना फौजों की, फौज भेजने की भी जरूरत नहीं, ना आसमान से बिजलियां गिराने की। कभी एक मच्छर ही काफी हो जाता है, और कभी छोटे छोटे परिंदे चोंचों में पत्थर लेके बुलेट्स का काम देते हैं, कभी हवाएं हैं जो इंसानों को सर उनके धड़ से अलग कर देती हैं, कभी सिर्फ एक चीख होती है जो कलेजों को फाड़ देती है। तो उसको तो ना किसी फौज की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। अब ये ऐसी जो सजा है या ऐसी जो बात है ना, किसी और जुर्म के बारे में नहीं आई, ना कत्ल के, ना जिना के, ना चोरी के, ना डाके के, किसी और में नहीं आई कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इस मामले के अंदर आई है, वह इन तुबतुम, और अगर तुम तौबा कर लो, मेरा रब कितना मेहरबान है कि फिर भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कि जब कोई बंदा ये सुनेगा तो यकीनन उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मैं तो नहीं जंग ले सकती। तो तुम डर जाओगे, फिर डर के तुम्हारा दिल चाहेगा तौबा करने का, तो फिर भी अल्लाह का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। और तौबा कैसे होगी? फौरी स्वसूदी लेन देन छोड़ दो, पिछताओ उस वक्त के ऊपर जब तुमने ये किया। और फिर तुम्हारे लिए क्या है? फलकुम रुउसु अमवालिकुम, फिर तुम्हारे लिए क्या है? जो तुम्हारे मालों का असल है, यानी जो तुम्हारी जो रकम है, जो तुम्हारी जो जो कर्ज के लिए तुमने दी है, जो तुम्हारी इनिशियल अमाउंट थी ना, वो बस तुम्हें मिलेगी, असल तुम्हारी रकम, उसके अलावा सूद नहीं मिलेगा। ला तज़लिमुना, ना तुम जुल्म करोगे, और वला तुज़लमू, ना जुल्म किए जाओगे। तुम जुल्म कैसे, जुल्म करना क्या है? सूद लेना जुल्म है, और तुम पर जुल्म कैसे किया जाएगा कि अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि नहीं जी तुम्हारी असल रकम भी नहीं तुमने ले ली, बस अब तुम जाओ छुट्टी करो और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। नहीं, जो तुम्हारी असल रकम है वो तो तुम्हें दी जाएगी, वो तो तुम्हारा हक है, ठीक है, वो तुम ले सकते, ना जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए, ठीक है, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ठीक है, तो तुम अपनी असल रकम ले सकते हो। देखिए इस्लाम में ये नहीं है, तौबा कर लो इसके बाद तुम्हें ये सजा मिलेगी कि असल रकम भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये नहीं है। अब बस तुम ये ले लो, लेकिन सूद को तुम छोड़ दोगे, सूद नहीं लोगे। वह इन खाना जो उसरतिन, और अगर है कोई तंगी वाला, फनाजिरा तुन इला मैसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक। अब क्या है, देखिए अब जब असल रकम लेने का टाइम आए तो इंसान कहता है जब सूद तो मिलना नहीं है, जब ये पता चल गया ना कि सूद नहीं मिलना, तो तुमने साल भर बाद मुझे देना था, नहीं मुझे तो अभी मेरे पैसे निकालो, जब यहां से कोई फायदा ही नहीं, क्या फायदा इसको देने का, मैं उसकी बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, तो इंसान कहता है फौरन दो। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर वो तंगी वाला है, कौन है तंगी वाला, किसको कहा गया, यानी जिसने कर्ज लिया है, अगर उसके पास तंगी है, फनादिरतुन इला मईसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक, उसके हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो, यानी हाथ खुलने तक का मतलब क्या है, जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते उस वक्त तक तुम उसको मोहलत दे दो। देखें कितना प्यारा माशरा हो जाए जिसमें लोग इतनी हमदर्दी रखने वाले हों कि जो है ना कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हारे पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, तुम्हारे पास जब आसानी हो जाए तब दे देना, कितना रहम का, कितनी इंसानी हमदर्दी का माशरा हो जाए वो। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर मकरूज के पास नहीं है वुसत, तो बजाय उसको तंग करने के, उसका पीछा करने के, उसके दर पे हो जाने के, नहीं तुम उसको टाइम दो, मोहलत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे ये बात महबूब हो कि अल्लाह उसे कयामत की दिन तंगियों से निजात दे, तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या माफ कर दे। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कयामत के दिन सख्तियों से निजात दे, उस दिन की सख्ती से, तो यहां पे वो जिसके ऊपर सख्त टाइम आया हुआ इस वक्त, उसने कर्ज वापस करना है, उसको मोहलत दे दे। हमारे यहाँ क्या होता है, आपको पता है कितने सारे कत्ल इस वजह से होते हैं, एक वो कर्ज लेने गया, वो कर्ज उस वक्त से उसे मांग रहा था वापस दो, वो दे ही नहीं रहा था, कभी लोग झूठ बोलते हैं, कभी लोग वादा खिलाफी, बस अगले महीने दे दूंगा, उसे अगले दे दूंगा, उसे अगले दिन, करते 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 ये हाल आ जाता है कि वो एक दूसरे को उठा के कत्ल ही कर देता। और इसी तरह आप ये देखें कि बैंक वाले, ये जो बैंकिंग का निजाम है, जो सूदी निजाम है, वो कहां से किसी को मोहलत देंगे, वो तो मोहलत देते ही नहीं, उनके आगे थोड़ी आयते हैं कि वो कहेंगे हाँ जी हम थोड़ा सा अजर कमा लें, नहीं, ये नहीं है कि बैंकिंग जो है ना इस्लामिक नहीं हो सकती, इस्लामिक बैंकिंग भी हो सकती है, उसका क्या तरीका है कि जब बैंक जो है ना वो किसी लोगों के पैसे इतने सारे उनके पास पड़े होते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करें पैसों को, और जो प्रॉफिट हो उसमें अपना हिस्सा रख के, जो इतना उन्होंने काम किया उस वो अपना एक यानी जो जायज मुनाफा है वो रख के बाकी लोगों को दे, और अगर नुकसान होता है तो उसमें भी फिर लोग जाहिर नुकसान उठाएंगे, तब तो सही है, तब तो तिजारत है, लेकिन अगर वो अपने पास फिक्स रख लेते हैं और बैंक करता क्या है, वो लोगों को आगे कर्जे देता जाता है सूद पे, तो वो फिर आराम हो गया। तो यहाँ पे क्या फरमाया कि तुम लोगों को ऐसे ना करो कि उनको तंग करने लगो, उनके पीछे पड़ने लगो, तुम उनको मोहलत दो। और अगर वह अंत सद्दकू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम सदका कर दो, सदका करने का मतलब क्या है, माफ कर दो उसको, कहो कि मैंने तुम्हारे पर सदका कर दिया, चलो मैंने छोड़ा, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें पता हो। हालांकि बजाहिर तो इंसान का नुकसान हो रहा है ना कि हाय सूद तो गया मेरा, तो असल माल भी गया, मगर कुरान फरमाता है ये बेहतर है। क्यों बेहतर है, दो वजह है इसकी, एक तो ये वजह है कि इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के बाद तुम वो वक्त देखोगे जब ये इतना सा माल जो तुमने छोड़ा है ना, इसकी वजह से तुम्हारी आखरत की सख्तियां अल्लाह ताला दूर कर देगा, या जन्नत की नेमतें तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी, तो तुम कहोगे ये तो बेहतर है, और दुनिया में भी तुम्हें बेहतरी नजर आएगी, इसलिए कि जो तुम्हारे पास माल है अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। और बरकत से फिर मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है बरकत की वजह से माल बढ़ जाए, कि अच्छा मेरे पास 1,000 था तो अब मेरे पास 2,000 हो गया, और अगर 2,000 नहीं हुआ तो आप तो कह रहे थे कि बरकत होगी, ये तो कुछ भी नहीं बरकत होगी, ये तो 1,000 का 1,000 ही पड़ा हुआ है। नहीं, बरकत ये नहीं होती कि क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, बरकत जो होती है ना, कभी थोड़े माल से भी आपके इतने काम हो जाते हैं कि वो है बरकत, और हराम माल से कितनी स्पेंड करते हो फिर भी नहीं काम हो पाता, ठीक है। तो जिस माल में बेबरकती होती है उसका हाल क्या होता है, जिस मकसद के लिए खर्च करते हैं ना वो मकसद नहीं मिलता, या फिर बेकार चीजों में माल खर्च हो जाता है। तो इसलिए समझे बरकत की बात को। तो अगर तुम मोहलत देते हो, आसानी करते हो, तो उसके ऊपर भी इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला आखरत की आसानियां कर देता तुम्हारी। और अगर सदका कर देते हो तो फिर तो अजर ही अजर है। हदीस में है कि जो शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया चाहता है ना, वो या तो ऐसे तंगी वाले शख्स को मोहलत दे दे या माफ कर दे। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस में मुसनद अहमद की, कि जो शख्स मुफलिस आदमी पर अपना कर्ज वसूल करने में नरमी करता है और उसको ढील देता है, तो जितने दिन वो कर्ज की रकम अदा ना कर सके उतने दिनों तक हर दिन उतनी रकम खैरात करने का सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कर्ज दिया 1,000 डॉलर, अब उसको कहा 5 तारीख को देना, वो 5 तारीख को उसके पास नहीं थे वापस करने के लिए पैसे। अब जितने दिन गुजरते जाएंगे हर दिन मुझे 5,000 डॉलर खर्च कर सदका करने का अजर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, हर रोज उतनी रकम खैरात करने का। और एक और रिवायत में आपने फरमाया हर दिन उससे दुगनी रकम करके सदका करने का सवाब मिलेगा। ये सुन के हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल्ला पहले तो आपने हर दिन उसके बराबर सवाब करने का फरमाया था, आज आप दो मिसल फरमाते हैं। फरमाया हाँ, जब तक मियाद खत्म नहीं हुई मिसल का सवाब है, और मियाद गुजरने के बाद दो मिसल का, यानी फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को उसने वापस करना था, 5 को नहीं किया, उसको मोहलत दे दी मैंने कि भाई 10 को आप कर दें। अब 10 तारीख तक जितनी मोहलत दी है ना, तो फरमाया ना फनादिरतुन इला मैसरा, आसानी तक मोहलत दे दो। उसने कहा मुझे, मैं 5 को नहीं दे सकती, मैं 10 तारीख को दे दूंगी। अब ये जो 5 दिन गुजरते हैं, हर दिन 5,000 डॉलर सदका करने का अजर मिला। अब 10 तारीख भी गुजर गई, अब 10 तारीख को भी नहीं वो दे सका, तो अब क्या है, 5 नहीं 10,000 डॉलर सदका करने का हर दिन अजर मिलेगा, डबल का मिलेगा। तो इसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। देखो इस्लाम कितना प्यारा मुआशरा बना देता है, जिसमें लोग कितने एक दूसरे के साथ आसानी करते हैं। मुसनद अहमद की हदीस में कि ये मुसनद अहमद में नहीं, शायद ये मुझे नहीं पता कि कौन सी हदीस की किताब में, नहीं मुस्लिम में है, मुस्लिम में। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्ज एक शख्स के जिम्मे था, वो तकाजा करने को आते थे लेकिन ये छुप रहते थे और नहीं मिलते थे। एक दिन वो आए तकाजा करने के लिए, कर्ज मांगने लगे, कि घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा, उसने कहा हाँ ये घर में मौजूद है, खाना खा रहे हैं। अब अबू कतादा ने ऊंची आवाज से इन्हें पुकारा और फरमाया मुझे पता है कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो। वो बेचारे बाहर निकले, आपने कहा क्यों छुप रहे हो, कहा हजरत बात यह है कि मैं मुफलिस हूं, इस वक्त मेरे पास रकम नहीं है, इस वजह से शर्मिंदगी की वजह से मैं आपसे नहीं मिलता। आपने कहा कसम खाओ, उसने कसम खाई, आप रोए और फरमाने लगे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये अब हदीस मुस्लिम में है, कि जो शख्स नादार कर्जदार को ढील दे या अपना कर्जा माफ कर दे तो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श तले होगा, अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला उसे पूछेंगे बता मेरे लिए तू क्या नेकी लेके आया, वो कहेगा या अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो मैं आपकी आगे पेश करूं, जिसकी जजा मैं मांग सकूं। अल्लाह ताला इससे फिर पूछेगा, वो फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा वो फिर यही जवाब देगा। अल्लाह ताला एक छोटी सी बात अल्लाह एक छोटी सी बात मुझे अलबत्ता याद पड़ती है कि तूने अपने फजल से मुझे कुछ माल भी दे रखा था। मैं तिजारत पेशा शख्स था, लोग उधार वगैरह ले जाया करते थे। मैं अगर देखता कि ये गरीब आदमी है और वादे के मुताबिक कर्ज अदा नहीं कर सकता तो मैं इसको कुछ और मुद्दत की मोहलत दे देता था, और जो अयालदारों पे सख्ती नहीं करता था, जो अयालदार होते ना, बहुत फैमिली वाले, कुंबे वाले, बाल बच्चे बहुत हैं तो उन पे सख्ती नहीं करता था। अगर ज्यादा तंगी वाला किसी को पाता, यानी किसी के बहुत ही हालात खराब हैं, तो माफ भी कर देता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर मैं तुझ पे आसानी ना करूं? मैं तो सबसे ज्यादा आसानी करने वाला हूं। जा, मैंने तुझे बख्शा, जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, इस बात की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ किया कि तू लोगों के ऊपर आसानी करता था, उनकी तंगी में उनको मोहलत देता था। वो कर्ज नहीं अदा कर पाते थे, आपको पता है कि इसके हालात है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, तो फिर क्या है, माफ ही कर दे। और आपको नहीं पता कि उसे माफ करने में कितना बड़ा अजर आपको मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुसनद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद आते हुए जमीन की तरफ इशारा करके फरमाया, जो शख्स किसी नादार पे आसानी कर दे या उसको माफ कर दे, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो, जन्नत के काम मुशक्कत वाले हैं और ख्वाहिश के खिलाफ हैं। दिल नहीं ना चाहता माफ करने का, लेकिन जन्नत के काम हैं ही ऐसे जो मुशक्कत वाले और जिसमें दिल ना चाहे, और जहन्नुम के काम आसानी वाले हैं और ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक हैं। नेक बख्त वो लोग हैं जो फितनों से बचे हैं। इसी तरह तबरानी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुफलिस शख्स पर रहम करे और रहम करके अपने कर्ज की वसूली में इस पे सख्ती ना करे, अल्लाह भी इसके गुनाहों पर इसको नहीं पकड़ता यहां तक कि वो तौबा कर ले। इसी तरह एक और जगह है मुसनद अहमद में, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी दुआएं कबूल की जाएं और उसकी तकलीफ और मुसीबत दूर हो जाए, उसे चाहिए कि तंगी वाले लोगों पर कुशादगी करे। यानी तंगी वाले कौन होते हैं? जिनका हाथ तंग है, नहीं दे सकते। मुस्तदरक हाकिम में है, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले गाजी की मदद करे, या कर्जदार जो गरीब है उसकी मदद करे, या गुलाम जिसने लिख कर दिया उतनी रकम दे दूं तो आजाद हूं इसकी मदद करे, अल्लाह ताला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो ये मैंने कितनी सारी अहादीस आपको बताई। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने सारी अहादीस को ना सिर्फ उनका रिजल्ट बताना है, कि एक लाइन में लिखें कि जो शख्स किसी तंगी वाले को मोहलत देता है या उसको माफ कर देता है, उसके लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं। अब ये मैंने आपको बताई है ना हदीस में क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं उसके। अब मैं खुद नहीं बताऊंगी, आप लोग ये सारी हदीस में से सिर्फ रिवॉर्ड्स नोट डाउन करें। कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देती हूँ कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा उस दिन जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। ठीक है, तो और क्या क्या इसमें चीजें आई वो आप इंशाल्लाह लिखेंगे, ताकि आपको इसका पता चले कि इसके रिवॉर्ड कितने बने। क्योंकि जब इंसान को इसकी रिवॉर्ड पता चलते हैं ना, तो फिर देखिए माफ करना आसान हो जाएगा। और जहां पे देखिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे माफ कर रहा होगा, वहां पे उस सोसाइटी का तो सोचें कैसी होगी वो। तो देखिए कर्ज देने के कुछ असूल हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि कोई कर्ज मांगे तो खुशी से दे दो, कर्जे हसना दे दो। वो ना दे पाए तो मोहलत दे, बिल्कुल ही ना दे सके तो माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ये भी कहता है कि लोग कर्ज भी ना मांगने की आदत डाल लें, इसको भी डिस्करेज करता है। लेकिन जहां पे हमने अभी बात की थी ना कि देने को इस्लाम कहता है सदका करो सदका करो सदका, दूसरी तरफ लोगों को कहता है कि तुम भी हाथ ना उठाते फिरो कि हर एक के आगे हाथ मांगने के लिए फैला दिया। समझ आ गई बात? इसी तरह यहां पे कर्ज कोई मोहलत किसी को चाहिए तो उसको मोहलत दो, नहीं दे सकता तो माफ करो। दूसरी तरफ लोगों को कहा, अब तुम भी ये नहीं है कि तुम कर्ज ही मांगने पे तुल जाओ हर बात बात पे। अब ये छोटा घर है इसे बड़ा लेना है, अब कर्ज ले लिया। अब गाड़ी है ये नहीं पसंद आ रही नए मॉडल की लेनी है, अब कर्ज ले लिया। अब ये शादी करनी है, अब उसके ऊपर फजूल रसूमात है वो तो अदा करनी है, उनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं, अब कर्ज ले लिया। तो कर्ज ऐसे नहीं है चीज, देखें कर्ज वो चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जो कर्जदार होता था। कर्ज ऐसी चीज नहीं है आराम से बस कोई बात नहीं, कर्जा ही है ना, वापस कर देंगे। अगर ये वो बंदा जो मर गया होता था उसके जो उसने कुछ माल छोड़ा होता था उसमें से कर्ज अदा हो जाता था, फिर तो नमाज जनाजा पढ़ा देते थे। अगर नहीं अदा होता था तो बाद में जब आपके पास माले गनीमत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्सा मिलना शुरू हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका कर्ज अदा करते थे, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। और अगर नहीं हो सकता था तो नहीं पढ़ाते थे, कि पूछते थे इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है, इतनी बुरी चीज है कर्ज। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह मांगा करते थे, इतना नापसंद करते थे। दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमि वल मगरम, गुनाह से और कर्ज से अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखना। तो एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप कर्ज से आप इतनी मतलब क्यों पनाह मांगते हैं? फरमाया, जब इंसान कर्ज लेता है तो उसका हाल ये हो जाता है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता। ऐसे ही हो जाता है, कर्ज ले लेता है तो फिर क्या करता है? जो वो उसे पूछेगा कब अदा करना है, नहीं जी फलां तारीख को कर दूंगा, फलां को कर दूंगा, आगे से आगे करता जाता, वादा करता है, नहीं अब बस कसम से मैंने अब इस दफा तो मेरा आपसे पक्का वादा है, फिर वो पूरा नहीं करता। और एक हदीस में यह है कि शहीद का भी हर गुनाह माफ हो जाता है सिवाय कर्ज के। यानी शहादत कितना बुलंद दर्जा है, लेकिन शहीद के भी बाकी गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज जो है ना उसके ऊपर फिर भी रहेगा, कर्ज का उससे सवाल होगा। और इधर देख लें आप, इनको ये बताया गया। तो देखें आप ऐसी सोसाइटी के अंदर एक बंदा जब इंतहाई मजबूर हो जाएगा ना तभी वो कर्ज लेगा, और वो अगर इतना मजबूर होगा तो दूसरी तरफ कर्ज देने वाला उसको सहूलत देगा, इसलिए कि वो हदीस में है जो तंगदस्त को सहूलत देगा अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में उसको सहूलत देगा। ठीक है, अल्लाह दुनिया और आखरत में इसके लिए यानी आसानी कर देगा, उसको सहूलत दे देगा, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है उसके सामने। तो ये ऐसा तो फिर कभी नहीं हो सकता कि कोई बेचारा कर्ज लेके फिर इतना मजबूर हो जाए कि खुदकुशी करने चला जाए, या उसका घर बार भी लूट जाए, उसका कारोबार भी खत्म हो जाए। बाज दफा ऐसे होता है तन के कपड़े तक छीन लिए जाते हैं, लोग सड़क पे आ जाते हैं दिवालिया होके, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा फिर, जिस माशरे में ये माहौल हो वहां पे सोचिए हमदर्दी होगी, भाईचारा होगा, एक दूसरे के साथ कितनी एक मोहब्बत की फिजा होगी, ताल्लुकात कितने अच्छे होंगे, कितना अमन और सुकून होगा। और नहीं ऐसा होगा तो फिर आपको पता ही है जैसे हमारे यहाँ होता है कि गर्दनें काट दी जाती हैं फिर एक कर्ज लेने के लिए, वापस लेने के लिए। अब इसके बाद जो आखिरी आयत नजूल के एतबार से कुरान पाक की आखिरी आयत फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह। देखें किस हुक्म के बाद ये आयत रखी गई, डर जाओ उस दिन से जब तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, उसके दरबार में तुम्हें जाना होगा। याद रखो तुमको वापस लौटना है, यही नहीं बैठे रहना। कितने दिन तक तो तुम सूद की रकमें खा लोगे, कितने दिन तक तुम ये फायदे उठा लोगे, नहीं जी बेवा है अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, बैंक में रख के खाते हैं, ये है वो है, कितने दिन खाओगे ये, कितने दिन लोगों को लूटोगे, कितने दिन सूद के ऊपर कारोबार करके अब तुम ऐश करोगे। आखिर एक दिन तो तुम्हें वहां लौट के जाना है ना, जो अल्लाह की अदालत है। अल्लाह ताला ने देखें कैसे दुनिया से निकाल के हशर के मैदान में खड़ा कर दिया, जहां से कोई फरार नहीं हो सकेगा, भाग नहीं सकेगा। इस तसव्वुर से ही इंसान कांप उठता है। और सोच लें अगर ये आखिरी आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो सोचें अल्लाह ताला ने जो आखिरी हुक्म दिया वो किस चीज का दिया? तकवा, डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से। याद रखो उस दिन को भूलना ना, तुम्हें वापस जाना है। आखिरी नसीहत यही है, आखरत का कुछ होश करो, यही बैठे रहना है क्या तुमने? अब ये बात अगर जहन में रहे तो वही काम जो हमारे लिए करने इतने मुश्किल लगते हैं हमें कि ये तो बस मैं कर ही नहीं सकती, इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, है ये तो मेरे लिए बस जिंदगी मौत का मसला है, वो सारे ही काम आसान हो जाते हैं। मुश्किल लगते ही तब है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने यही रहना है, यही रहना है, तो तब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जब ये सोच आ जाए ना कि पता नहीं आज की रात मेरी घर में गुजरेगी या कब्र में, तो फिर आसान हो जाता है। देख लो सुम्मा तो वफा कुल्लू नफ्स मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाई की, वो कमाई नहीं जो कोठियां और महल दुनिया में बनाए हुए थे, अमल की कमाई। उस वक्त तुम्हारे ये आमाल तुम्हारे काम आएंगे, तो इन आमाल को जमा करो, नेकियों को जमा करो। किसी को अगर तुमने माफ भी कर दिया तो तुम्हें लग रहा नुकसान हो गया, नहीं, तुमने तो नेकी जमा कर ली, उसी का उस दिन हिसाब होना है, उसी के बदले तुम्हें वहां पे अजर मिलेगा। और ये कोठियां, ये मोहल्लात, ये गाड़ियां, ये प्लाट, ये बैंक बैलेंस किस काम आएंगे, ये तो फिरौन और कारून के पास भी थे। तो वहां पे तुम्हारे नेक आमाल हैं जो तुम्हें लेके पहुंचना होगा। फिर तुम दुनिया बनाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो, इसी को बढ़ाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो, कभी किसी पे जुल्म करते हो, कभी किसी से छीनते हो, अपना ही पेट भरने में क्यों लगे हो। तुम्हारे पर तो हर वक्त ये फिक्र तुम्हारे सर पे सवार रहनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो वहां के लिए मेरे पास क्या है, मैं वहां क्या दिखाऊंगी, क्योंकि वहां पे वो दिया जाएगा जो तुमने किया उसका पूरा पूरा बदला। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, जुल्म नहीं होगा उनके ऊपर। जुल्म कैसे है, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर या तो कोई जो गुनाह उसने ना भी किया वो भी उसके सर डाल दिया जाए, दुनिया में ये जुल्म होते हैं ना, मजलूम के ऊपर डाल दिया जाता है, बेगुनाह के ऊपर डाल दिया जाता है, या जुल्म ये भी हो सकता है कि किसी को उसकी नेकी का बदला ही ना मिले। नहीं, जो तुमने किया होगा पूरा पूरा दिया जाएगा, नाप तोल के दिया जाएगा, फिक्र ना करो, कहीं नहीं जाती तुमने अगर खलूस दिल से कोई नेकी की है। तो वहां कामयाबी पाने के लिए सूद भी छोड़ो, माफ भी करो, कर्जदारों को मोहलत भी दिया करो। अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने वाला बनाए, क्योंकि एक जमाना आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें जो सूद नहीं भी लेता होगा उसको भी उसका गुबार तो पहुंचेगा, यानी उसकी डस्ट तो पहुंचेगी। लोग सूद मतलब वैसे नहीं कि खुद खा रहे हैं, लेकिन उसके गुबार यानी उसका जो, जैसे आज के वक्त में अब अगर बैंक में आप नहीं पैसे रखते तो फिर क्या करेंगे, तो रखने होते, तो गुबार तो पहुंचा ना, तो गुबार पहुंचेगा, ऐसा होगा, ओके, पूरा निजाम ही उसका चल रहा है। तो कई चीजें तो हैं उनसे तो इंसान बच ही नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं वो उन पे तो आप हाथ रोक सकते हैं ना। अब कुछ इस चीज के अंदर मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे ये करना चाहूंगी जो इसमें इतराजात किए जाते हैं। बाज लोग ये कहते हैं जरूरत के तहत लिया जा सकता है सूद, जरूरत अगर है जैसे घर लेना है तो एक के लिए लिया जा सकता है, एक से ज्यादा के लिए हराम है। तो ये कहाँ से हमने डिफाइन किया, हमने जरूरत की बात तो यही पढ़ी थी कि हराम उस वक्त ही जायज है जब जिंदगी मौत का मसला है ना, आदि ना कोई उसका वो ना करने वाला हो, जो उसकी आदिन था ना कि जो सरकशी ना करने वाला हो, बागिन ना हो, बागी ना हो, ऐसे ही इंसान के लिए वो सिर्फ उतनी सी अमाउंट, उतनी सी चीज लेना जायज है जो जो ऐसे मकाम पे आ गया हो कि अगर ना करेगा तो मौत है। तो ये फिर हम बस कहां से फतवे ले आते हैं पता नहीं। फिर बाज लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाती सूद था, तिजारती सूद नहीं था, ऐसी बात नहीं है, जाती सूद भी था, तिजारती सूद भी था, उस जमाने में तिजारत के ऊपर भी सूद दिया जाता था। बाज लोग कहते हैं आज का सूद वो नहीं है जो उस वक्त का होता था, उस वक्त तो लोग तंग करते थे तो इसलिए, तो आज बैंक वाले क्या करते हैं? वो तो उससे भी ज्यादा बेरहम है। जब लोग दिवालिया होते हैं तो क्या होता है, उनकी जायदादें, कारोबार सब नीलाम हो जाते हैं। फिर बाज लोग कहते हैं अगर दोनों पार्टीज राजी हों तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो गलत काम पे अगर दोनों पार्टीज राजी भी हो जाएं तो तब भी वो जायज नहीं हो जाता। जिना में दोनों रजामंद हो कि जिना करना है तो क्या जायज हो गया? फिर बाज लोग कहते हैं कर्जा लेने में तो किसी पे जुल्म नहीं हो रहा। तो कर्ज ले रहा है वो तो अपना कारोबार कर रहा है। नहीं, अगर मकरूज कर्ज खा की रकम को दबा ले जो कर्ज देने वाला है उसके ऊपर जुल्म हो गया। या उलट भी अगर हो जाता है, जिसने कर्ज लिया हुआ है उसके ऊपर भी जुल्म हो सकता है जब उसको नुकसान हो और उसको फिर भी पे करना पड़ता है, तो उसको भी उसके ऊपर भी है। अदरवाइज दूसरा जुल्म कर रहा होता है जब उससे ज्यादा सूद खींच रहा होता है। दोनों सूरतों में जुल्म है, दोनों सूरतों में हो सकता है। बाज कहते हैं कम सूद लेना ठीक है। तो देखें जिस चीज की ज्यादती हराम है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में वो हराम है, उसकी कमी भी हराम है। अब शराब ये नहीं है कि 2 घूंट पी लें तो वो हलाल है, 10 घूंट पिए तो हराम है, ऐसा नहीं है। इसी तरह बाज लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो उसमें काफी मुद्दत के बाद, जब फिर शुरू में तो पैसा नहीं निकलवा सकते, तो काफी मुद्दत के बाद जो पैसे मिलते हैं क्या वो सही है? तो वो उसके ऊपर भी तो सूद ही मिलता है, वो भी सूद ही है। चेक इन अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ना रखें। बाज़ उलमा ने कहा सेविंग रख लें, उसमें जो इंटरेस्ट आता है उसको गुरुबा में दे दें, क्योंकि हमारे मुल्कों से भी तो ये सूद लेते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि चेक इन ही अकाउंट सिर्फ रखा जाए। क्या पता कल को हम मर जाए, हमारे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि हमारे माँ बाप की क्या नीयत थी। वो भी कहेंगे हमारे माँ बाप का भी सेविंग अकाउंट था, हम भी रखते हैं। अब ये कैसे, ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी, कैसे होगा? एक दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए फिर क्या है, सबसे पहले तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी जरूरी है कि ये हराम है, ये गलत है, ये और सूद के बगैर भी चल सकती है दुनिया। अब हमारे तो ये समझा जाता है ना, सूद के बगैर तो कुछ है ही नहीं, सूद के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। सूद के बगैर भी निजाम चल सकता है। हाँ, हमारे लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे वो बैठ के इसके ऊपर बात करें, इस चीज के ऊपर देखें तो रास्ते निकल सकते हैं। हाँ, मगर नीयत ये हो कि हाँ हमने इस हराम से बचना है, तो इस चीज की अवेयरनेस पैदा की जाए, इस चीज के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए, तो तब बात है। हाँ, बस अब ये है कि फरमाने तुर्रा वाली बात है ना, कि जो बहुत ही मजबूर, बहुत ही मजबूर, तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी किसी के ऊपर नहीं कोई फतवा दे सकता। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किस चीज में किसको वो माफ कर दे किसको नहीं, हम तो नहीं इस चीज का कह सकते। तो इस चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में होगा कि इस्लामिक आजकल वो है क्या, फाइनेंसिंग और ये सब है, तो इसका क्या है? तो सूद का तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि सूद क्या चीज होती है, खुद भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग islamqa.com पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे मुफ्ती होते हैं। मैं नहीं किसी चीज की मिजाज के मैं फतवे देने लगूं कि फलां वाली सही और फलां नहीं सही, क्योंकि इतनी सारी अब इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ गई हैं और उसमें बहुत डिटेल्स हैं, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें सूद जैसी लानत से महफूज रखे, अल्लाह ताला इस बुराई से हमें भी, हमारी नस्लों तक को भी महफूज रखे। अल्लाह ताला वही हमें हमारे तक पहुंचाना, या अल्लाह वही हमें रिस्क देना जो इन चीजों से पाक हो, या हराम से पाक हो। हराम के साथ ना तो दुआएं कबूल होती, ना इबादात कबूल होती है, ना नेकियां कबूल होती। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखना। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इंशाअल्लाह।
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون